नेता बोले,
अफसर बोले,
पैसा बोला,
बंदूक बोली,
अभिनेता विलेन बोले,
नहीं बोल सके तो बस आप।
अब इंतजार खत्म, जुबान पर लगे ताले खोल, बीबीसी इंडिया बोल।
नमस्कार, आपका स्वागत है बीबीसी इंडिया बोल में। मैं हूं आदर्श राठौर। आप इस कार्यक्रम को रेडियो के साथ साथ bbchindi.com, मोबाइल और फेसबुक पर भी लाइव सुन रहे हैं। हमारी टेलीफोन लाइनें खुल चुकी हैं 1811-7000 और 1811-7001 पर आप मुफ्त फोन कर सकते हैं। वरिष्ठ पत्रकार मधुसूदन आनंद स्टूडियो में मौजूद हैं। विषय एक बार फिर बता दें, क्या भारतीय मुसलमानों को पाकिस्तानी कहे जाने पर सजा होनी चाहिए? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि संसद में हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आज़ादी के 70 साल बाद भी पाकिस्तानी कहकर उन्हें पुकारा जाता है। उन्होंने कहा कि SC ST एक्ट की तर्ज पर कड़ा कानून बनाया जाना चाहिए। सुनिए क्या कहा उन्होंने।
आज भी 70 साल के बाद मुझे पाकिस्तानी कहकर पुकारा जाता है। क्यों मैडम? ये मैंने जिन्ना के पैगाम को ठुकराया हर जगह पर मैडम। अब तो हम तिरंगा भी नहीं लहरा सकते। मैं हुकूमत से पूछना चाहता हूँ कि क्या आप ऐसा कानून बनाएंगे, ऐसा कानून बनाइए जिस तरह SC ST को बनाया गया कि जो कोई भी हिंदुस्तान में किसी मुसलमान को पाकिस्तानी पुकारेगा उसको नॉन वैल्यूएबल बनाएंगे, क्योंकि 153 फेल हो चुका है।
तो असदुद्दीन ओवैसी की मांग है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को पाकिस्तानी कहने को गैर जमानती अपराध बनाया जाना चाहिए। बीजेपी सांसद विनय कटियार ने समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा था कि देश में मुसलमानों को तो रहना ही नहीं चाहिए, उन्हें बांग्लादेश या पाकिस्तान चले जाना चाहिए। सुनिए।
जो देश के अंदर वंदे मातरम नहीं मानते हैं उनको सजा होनी चाहिए, जो देश के अंदर राष्ट्रीय ध्वज को अपमान कर देते हैं उनको सजा होनी चाहिए, जो पाकिस्तानी झंडा लगाते हैं उनको सजा होनी चाहिए। देश के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो बोलेंगे हल्ला मचेगा, वो ठीक नहीं है, लेकिन ये सब काम होने चाहिए। और दूसरी बात तो ये है कि मुसलमान तो देश के अंदर रहना नहीं चाहिए। उन्होंने जनसंख्या के आधार पर देश का बंटवारा कर लिया, यहाँ इस देश के अंदर रहने की क्या आवश्यकता थी? फिर उनको अलग भूभाग दे दिया गया, बांग्लादेश या पाकिस्तान जाएं, यहाँ क्या काम है उनका?
तो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार मधुसूदन आनंद, आपका स्वागत है। इससे पहले कि कार्यक्रम में हम श्रोताओं की टिप्पणियों को और उनकी राय को शामिल करें, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो हमने दोनों बयान सुने, आप इसको किस तरह से देखते हैं और जो हमारा आज का विषय है उस पर आपकी क्या राय है?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी और उसके जो आनुषांगिक संगठन हैं वो लगातार मुसलमानों के बारे में तरह तरह के बयान देते रहे हैं। लिंचिंग की घटनाएँ हुई हैं, अखलाक को मारा गया है, पहलू खान को मारा गया है और भी बहुत सारे निर्दोष मुसलमानों को भीड़ ने मार दिया है। मुसलमान को देखकर उनके खिलाफ नारे भी लगते हैं और उनको ये भी कहा जाता है कि उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए, ये आतंकवादी भी हैं, इस तरह की बातें कही जाती हैं। ये कुल मिलाकर एक बिल्डअप है और ये तैयारी है कि किस तरह से वोटों का ध्रुवीकरण किया जाए, और वोटों का ध्रुवीकरण करने की ये प्रक्रिया काफ़ी समय से चल रही है, बल्कि डे वन से चल रही है और अभी भी ये ख़त्म होने वाली नहीं है। जहाँ तक असदुद्दीन ओवैसी की मांग है तो मैं समझता हूँ कि इससे कुछ नहीं होने वाला, बदलने की ज़रूरत है मानसिकता। भाई क्यों, उनका बराबर का अधिकार है, आपने एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र चुना, उन्होंने धर्म के आधार पर पाकिस्तान चुना, यहाँ जो पाकिस्तान जो नहीं गए मुसलमान वो यहाँ रह गए, 70 साल से रह रहे हैं, उनके बाप दादे यहाँ रहे हैं, तो आप किस हक से उन्हें ये कहते हैं कि उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए? ये बहुत ही शर्मनाक है। और इससे पहले इस तरह की बातें बहुत दबी जबान में होती थी, अब खुलेआम इसको कहा जा रहा है। और दुखद ये है कि जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का जो सर्वोच्च नेतृत्व है वो भी सिर्फ बयानबाजी करके कभी कभी ठंडा पड़ जाता है।
लेकिन इस तरह से अगर हम देखें तो समाज के विभिन्न अंगों में, अगर जैसे हम फेसबुक पर ही बात करते हैं, वहाँ पे भी इस तरह की टिप्पणी आती है, चाहे आप किसी कोई इस राजनीतिक दल से जुड़ा हो या ना हो, उसकी मानसिकता में या उसकी बातों में भी इस तरह की बातें झलकती हैं, तो समाज में जो गहराई तक रची बसी हुई हैं ये चीज़ें। तो क्या जैसे ये कह रहे हैं कि एक सख्त कानून बनाया जाना चाहिए, जिस तरह की SC ST एक्ट है, अगर कोई अपमान करता है या कोई इस तरह का अपराध करता है तो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और सज़ा का प्रावधान होना चाहिए, क्या उससे चीज़ें सुधरेंगी?
नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि उससे चीज़ें कितनी सुधरेंगी मैं निश्चय पूर्वक नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि आज की तारीख में FIR दर्ज कराना साधारण मामलों में, आपराधिक मामलों में लोगों की का पसीना निकल आता है, बरसों महीनों उनको धक्के खाने पड़ते हैं, तो इससे नहीं होगा। समाज में जो सकारात्मक नेतृत्व है, जो सकारात्मक शक्तियां हैं, जो समाज के ताने बाने को समझती हैं, जो हमारी धर्मनिरपेक्षता के ढांचे को समझती हैं, वो आगे आए और लगातार दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां भी BJP पर और उनके जो सहयोगी संगठन हैं उन पर दबाव बनाए कि भाई इनको रोकिए, ये आपके हाथ में है सारा कुछ रोकना, आप इनको रोकिए। क्या कारण है कि आपके आने के बाद ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं?
जी चलिए, हमारे साथ कुछ श्रोता जुड़ गए हैं फ़ोन लाइन पर। जी अपना नाम बताएं और ये भी बताएं कि कहां से आप बोल रहे हैं।
नमस्कार मधुसूदन जी, मैं अश्विनी कुमार बोल रहा हूँ अम्बेडकर नगर उत्तर प्रदेश से।
जी,
और मेरा मानना है कि एक शब्द के लिए जो खिलवाड़ हो रहा है ओवैसी जी और कटियार जी कर रहे हैं, ये कोई राजनैतिक मुद्दा नहीं बल्कि नैतिक मुद्दा है, और हम अपने नैतिकता को धीरे धीरे खोते जा रहे हैं जिसके कारण ये समस्या उत्पन्न हुई है।
जी बने रहिए हमारे साथ फोन लाइन पर, हमारे साथ एक और श्रोता जुड़े हुए हैं। जी अपना नाम बताएं और अपनी बात रखें।
सर बोलिए।
जी बताएं।
मेरा नाम जबलुद्दीन है, मैं बाराचट्टी जिला बिहार से बोल रहा हूँ।
जी जी
जी सर, ऐसी बात है कि जो यहाँ के मुसलमानों को पाकिस्तानी कहा जाता है, तो हम ये इसको समझते हैं कि शायद ये एक गाली मुसलमानों को दी जाती है। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा होने लगा तो जो लोग पाकिस्तान गए वो धर्म के आधार पर उन्होंने पाकिस्तान मांगा, हम लोगों ने सेकुलर हिंदुस्तान मांगा, सेकुलर हिंदुस्तान में रहे और मौलाना आजाद के फॉलोअर रहे, इसीलिए हिंदुस्तान में रहे। आज भी हम लोग यहाँ 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा फहराते हैं।
जी बिल्कुल, तो जिस तरह से ये दो श्रोता हमारे साथ जुड़े, एक जो पहले वो कह रहे थे कि ये मामला जो है ये राजनीति के साथ साथ एक नैतिकता से भी जुड़ा हुआ है कि हम इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा अहमियत देने लग गए।
देखिए ये तो बात बहुत साफ है कि राजनीति में कितनी शुचिता और कितनी नैतिकता बसी है। सब जानते हैं कि राजनीति का किस तरह से अवमूल्यन हो चुका है और किस तरह के लोग राजनीति के जरिए सत्ता की सिंहासन पर बैठे हुए हैं, तो उन लोगों से कोई बहुत ज़्यादा आप आशा नहीं कर सकते। सिर्फ दबाव की राजनीति, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जितनी पॉलिटिकल फोर्स हैं, जितने समाज के विवेकवान तबका है, उन्हें इस मोर्चे पर आगे आना चाहिए। अब भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया अन्ना ने, क्या ये चीज़ आपको नहीं चुभती कि एक हमारे भाई जो साथ में हमारे साथ, हम उनके साथ ईद मनाते रहे हैं और वो हमारे साथ होली और दिवाली मनाते रहे हैं, उनको अचानक आपने समाज की नज़र में संदिग्ध बना दिया है? आप उनकी वेशभूषा के आधार पर, उनकी दाढ़ी मूछों के आधार पर, उनके कपड़ों के आधार पर, उनकी बोली के आधार पर ये सब तय करने लगे हैं कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है? ये जो धार्मिक पहचान बनाने की कोशिश की जा रही है, हम सब भारतीय हैं, क्यों धार्मिक पहचान आपको चाहिए? क्यों आप उनको मुसलमान समझते हैं? क्या वो के देश में बराबर की जिम्मेदार नहीं है देश के विकास में? क्या अब्दुल हमीद ने लड़ाई नहीं लड़ी पाकिस्तान के खिलाफ और उसके दांत खट्टे नहीं किए? कितने उसके टैंक को उसने नष्ट कर दिया, और तमाम बड़े बड़े लोग जो हैं इसमें सेना में भी हैं, पुलिस में भी हैं। इस तरह की चीजें नहीं की जानी चाहिए, इसको रोकना चाहिए।
बिल्कुल, हमारे साथ जो श्रोता जुड़े हुए हैं जिन्होंने कहा कि ये एक नैतिक मामला है, आपको क्या लगता है कि किस तरह से अगर एक्ट नहीं बनाया जाए, कोई सख्त कानून नहीं बनाया जाए, तो किस तरह से इस चीज को दूर किया जा सकता है?
सर इसमें नैतिकता को बढ़ावा देना चाहिए जिससे इस समस्या का समाधान हो सके। जैसे कि भारत की आजादी में सभी लोगों का योगदान था, किसी का कम और ज्यादा नहीं कहा जा सकता है। तो जब भारत आजाद हो रहा था इसीलिए उस समय राष्ट्र के धर्मनिरपेक्षता की बात कही गई थी, ना कि किसी पर्टिकुलर धर्म को मानने वाले राष्ट्र की बात।
जी 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 बिल्कुल, हमारे साथ और भी बिल्कुल धन्यवाद, एक और भी श्रोता जुड़े हुए हैं। जी बताएं अपना नाम बताएं, कहां से कॉल कर रहे हैं और अपनी राय रखें।
सर बोलिए। हेलो
जी बताएं।
हाँ जी नमस्कार, मैं राजेश बोल रहा हूँ, राजेश वर्मा, हिमाचल प्रदेश मंडी से। जी
जी जी
जी, ये जो बहस आप लोगों ने छेड़ी है, बड़ी अच्छी बहस छेड़ी है, इसका कुछ ना कुछ निकलना चाहिए हल। ये देखिए, देश जो है वो सभी का है, वो चाहे किसी धर्म से भी संबंधित है, किसी जाति से, किसी समुदाय से है, साथ में देश की एकता और अखंडता की जिम्मेवारी भी सभी की है, वो किसी एक पर्टिकुलर किसी एक धर्म की नहीं है। आज अगर बात करें जम्मू कश्मीर में जो आज घटना घटित हुई, अकबर लोन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक हैं, उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, तो आज तो ये लगता है कि जो हिंदू मुसलमान का दुश्मन नहीं है, बल्कि मुसलमान खुद मुसलमान का दुश्मन बना हुआ है। तो इसके लिए एक्ट, मैं नहीं मानता हूँ एक्ट, हमें अपनी सोच बदलने की जरूरत है।
जी, आप लाइन पे बने रहे। जिस तरह से इन्होंने कहा कि इस तरह की कुछ घटनाएं जब सामने आती हैं, तो फिर एक तरह से इस जो एक सोच है उसको बल मिलता है कि जो मुसलमानों के खिलाफ एक सोच है।
बिल्कुल, बल लगातार मिल रहा है। डे वन से मैंने कहा, इस सरकार के आने के बाद से ये इसको बराबर बढ़ावा मिल रहा है, इसको रोका जाना चाहिए। और रोकेगा कौन? कोई आम आदमी तो उसके लिए जाके घंटी नहीं बांधेगा बिल्ली के गले में, रोकेगा कौन? रोकेंगे वो लोग जो हिरावल दस्ते के रूप में आगे आए, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो भारत की चीज़ों को समझते हैं, भारत के संविधान को समझते हैं, भारत की परिस्थिति को समझते हैं। आप ये देखिए, सीधी सी बात है कि सबसे बड़ी आबादी वाला देश हो गया मुसलमानों की दृष्टि से भारत। आप 19 करोड़ या 22 करोड़ जितने भी मुसलमान हैं, उन्हें हिंद महासागर में डुबा सकते हैं, उनके लिए कोई अलग भूभाग दे सकते हैं? और क्यों पाकिस्तान आपसे लेगा, क्यों पाकिस्तान आपको तैयार करेगा, किस आधार पर आपको तैयार करेगा? आप रोहिंग्या मुसलमानों को लेने के लिए तैयार नहीं हुए, जो बिल्कुल बुरी स्थिति में यहाँ आए थे उनको आपने आने नहीं दिया, तो आपके मुसलमानों को दूसरा देश कैसे आने देगा? आपको सोचना चाहिए कि इन्हीं के साथ हमें मिल बाँट कर रहना है, मिलजुल कर रहना है। वो आप कोशिश करिए और उनको विकास में ज़्यादा हिस्सेदार बनाइए। उनकी स्थिति, जो आर्थिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, उसको बदलने का काम कीजिए। आज दलितों की और मुसलमानों की जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति, उसमें ज़्यादा फर्क नहीं है। ये क्यों है 70 साल के बाद भी?
जी, हमारे साथ एक और श्रोता जुड़े हुए हैं। जी, अपना नाम बताएं और अपनी राय रखें।
हेलो
जी,
मैं आशीष नड्डा बोल रहा हूँ आईआईटी दिल्ली से।
जी,
तो जैसे विनय कटियार और ओवैसी के बीच जो ये चल रहा है इस मामले में कि कानून बनना चाहिए, और विनय कटियार जी ने कहा कि मुसलमानों को पाकिस्तान जाना चाहिए, तो सबसे पहले मैं विनय कटियार जी के बारे में कहूँगा कि संवैधानिक पोस्ट पर बैठे हुए आदमी जिन जो शब्द लेते हैं भारत के संविधान की, जो एक धर्मनिरपेक्ष संविधान है, वो ऐसी बातें करते हैं, तो निश्चित रूप से देश में कानून की जरूरत पड़ चुकी है। हमने देखा है कि कैसे नॉर्थ ईस्ट के लोगों को चिंकी शब्द से संबोधित किया जाता था, उस पर भी इस देश में कानून बना। जब हम अपने ही देश के नागरिकों को इस तरह से करेक्टराइज्ड करेंगे, उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए, कल को हम नॉर्थ ईस्ट हिमाचल के ऊपरी भागों में रहने वाले लोगों की, जिनकी शक्ल जो है वो मतलब वोट तिब्बत या चाइना से मिलती है, हम उनके बारे में कहना शुरू कर देंगे, तो इससे नई परंपरा को जन्म मिलेगा। तो मेरा मत है कि इस पर जरूर कानून बनना चाहिए। और जो जम्मू कश्मीर का केस है, जम्मू कश्मीर अलग इशू है, आप चीजों को जनरलाइज नहीं कर सकते। जम्मू कश्मीर में अगर लोन एक मुसलमान होकर अगर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहा है, तो क्या आप हिमाचल प्रदेश के, पंजाब के, उत्तर प्रदेश के, बिहार के या चेन्नई तक के मुसलमानों को ये कह देंगे कि वो आदमी ऐसा कर रहा है तो आप भी उसकी तरह है?
बिल्कुल बिल्कुल। आशीष, आप लाइन पे बने रहे, हमारे साथ राजेश जुड़े हैं। राजेश, आप क्या कहना चाहेंगे आशीष की बात पे?
जी, मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस तरह हम बात करते हैं कि देश सभी का है, तो देश की सुरक्षा, देश की एकता, अखंडता, वो भी सभी को अपनानी चाहिए। ये नहीं कि किसी एक धर्म विशेष का ये है कि देश के लिए वही आगे आए कि हाँ जी ये देश मेरा, और दूसरा जो है उसमें आग का घी में आग डालने का काम करते रहे।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ दो श्रोता जुड़े थे जिन्होंने बात आगे बढ़ाई। आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे कि आशीष ने कहा कि ये बात सिर्फ मुसलमानों की को लेकर नहीं है, कल को जो हमारे और देश के अलग हिस्सों में हैं, जो हमसे मतलब मेन स्ट्रीम से कुछ अलग दिखते हैं, कल उनके खिलाफ कुछ इस तरह का माहौल बना दिया जाएगा, ये सिलसिला तो इस तरह से आगे से बढ़ता चला जाएगा। और ये कहते हैं कि कानून जो है वो सख्त बनना चाहिए।
देखिए, कानून से तो मैं शुरू से कह रहा हूँ आपसे, कानून से कुछ नहीं होगा। कानून आप बना लीजिए और फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन देखिए, कर लीजिए प्रयोग करना चाहे तो, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। मैं लगातार ये कह रहा हूँ कि आप ये समझाएं लोगों को कि ये लोग इतने साल से यहाँ रह रहे हैं, इनकी क्या खता है, इनके कुछ दिग्भ्रमित लोग अगर शामिल हो रहे हैं आईएएस में या ऐसे संगठनों में, हालांकि वो कम हैं, तो आप उन पर चोट करिए, वहाँ जाके उनको समझाइए, उनको शिक्षित करिए, ये तो कोशिश करनी चाहिए, उनके बीच आंदोलन चलाइए, और मुसलमान नेताओं भी ऐसे राष्ट्रवादी नेता हैं उनको भी करना चाहिए, लेकिन कानून बनाने से कोई बहुत लाभ होने वाली स्थिति नहीं। चोरी के खिलाफ कानून है, क्या चोरियाँ रुक गई? बलात्कार के खिलाफ कानून है, क्या बलात्कार रुक गए? अब तो और बढ़ते जा रहे हैं।
बिल्कुल, ये ओवैसी जब ये भाषण दे रहे थे लोकसभा में, तो आखिर में उन्होंने ये कहा था कि आर्टिकल 153 फेल हो चुका है, आईपीसी का जो सेक्शन, जिसके तहत अगर धर्म, नस्ल, जन्मस्थान या भाषा के आधार पर अगर दो समूहों के बीच दुश्मनी या मनमुटाव पैदा करने की कोशिश जाती है, तो वहाँ पे 5 साल तक की कैद हो सकती है। यानी कि अगर उस कानून के तहत नहीं हो पा रहा, तो नया कानून अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी तो वो। हमारे साथ कुछ और कॉलर जुड़े हुए हैं जी, अपना नाम बताएं, कहाँ से कॉल कर रहे हैं ये बताएं और अपनी राय रखें।
हेलो
जी,
आदाब राठौड़ साहब।
जी जी, अपनी राय रखें।
मैं दिलावर सिंह कादरी, मेराबाद जैसलमेर राजस्थान से अर्ज कर रहा हूँ।
जी दिलावर जी,
सर मैं अपनी बात शुरुआत करता हूँ। हम में माता एक कूचे बाजार की तरह उठती है हर निगाह खरीदार की तरह। सर मुद्दा ये है, मसला ये है, जब भी इस देश में मुसलमानों का मसला आता है, चाहे वो नेता हो, चाहे भारत की मीडिया हो, चाहे वो आम जनता हो, पाकिस्तान का नाम लेती है, इनको पाकिस्तान से ले जाना चाहिए। सर चीन का नाम क्यों नहीं लेते हैं?
जी,
जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के प्रति इस देश में, इस मीडिया में, मैं ये नहीं कहता हूँ, मेरे लिए सबसे पहले हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान की मिट्टी से मुझे मोहब्बत है, लेकिन चीन को भी हमें याद करना चाहिए। 1962 में हमारा क्या हाल किया था, अभी हमारे सेनाओं का क्या हाल कर रखा है चीन ने। लेकिन किसी भी, कभी भी किसी ने, एक बार मसाल का विरोध हुआ था जब चीन में चीनी ओलंपिक हुआ था, लेकिन फिर भी इंडिया को बैकफुट पे आना पड़ा।
जी दिलावर जी, ये आपका प्रश्न लेंगे, और इसके साथ ही एक और श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी अपना नाम बताएं और राय रखें।
जी सलीमुद्दीन सिद्दीकी।
जी सलीमुद्दीन जी,
सतना मध्य प्रदेश से मैं बोल रहा हूँ।
जी
मैं पूर्व सदस्य हूँ एमनेस्टी इंटरनेशनल का। नैतिकता की कमी और संविधान की आस्था समाप्त हो चुकी है, इसलिए ये लोग इस तरह की बातों का प्रचार करते हैं। आजादी सब ने मिल के लड़ी है, ऐसा नहीं था कि उसमें हिंदू ही शामिल थे, उसमें दलित भी थे, ठाकुर भी थे, सरदार भी थे, सब ने कुर्बानियां दी हैं और सबको यहाँ रहने का हक है।
जी बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि जो पिछले कॉलर थे दिलावर, उन्होंने एक सवाल उठाया कि अक्सर ये क्यों, अगर हम चुनाव के कैंपेन की बात करें, उस वक्त भी ये कहा जा रहा था कि जो विरोध कर रहे हैं उनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए, पाकिस्तान का नाम बार बार क्यों, क्या ये बहुत आसान हो जाता है इस तरफ?
देखिए ये बिल्कुल सही है कि जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान भारत के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, और हिंदुस्तान में ये है कि ये सब कुछ लोग तो हमारे जैसे ही हैं, ये तो ये अलग क्यों हुए? और सबसे बड़ा इसका उदाहरण ये है कि जो वहाँ 4 उपराष्ट्रीयताएँ थीं प्रमुख, उसमें एक 5वीं उपराष्ट्रीयता कौन सी बनी, जो मुहाजिर यहाँ से गए थे। उन मुहाजिरों को बिल्कुल अलग थलग रहना पड़ता है कराची में और सिंध प्रोविंस में, मतलब आप ये समझिए उनको मुहाजिर नाम से, शरणार्थी के नाम से कहा जाता है, जिनके कहने पर पाकिस्तान बना, जो सबसे बड़ी ताकत थे पीछे बांग्लादेश के, जो आज बांग्ला पूर्वी पाकिस्तान था, उसके उससे पहले जो वो जो इलाका था उसके लोग, और उत्तर प्रदेश और बिहार के जो मुसलमान हैं उनकी आवाज़ पर ये पाकिस्तान को बनने में बल मिला था, उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। लेकिन उनके साथ क्या हुआ, कुछ बिहार से मुसलमान गए थे जो बांग्लादेश के रास्ते जाना चाह रहे थे, बांग्लादेश ने उनको नहीं लिया और बिहारी मुसलमान शरणार्थी बन के उनको रहना पड़ रहा है, अभी तक रहना पड़ रहा था, अभी कोई स्थिति खास फर्क नहीं पड़ा है, तो आप पाकिस्तान क्यों लेगा आपको, आप पाकिस्तान, ये तो आप उनको वाकई में नीचा दिखाने के लिए गाली के रूप में इस्तेमाल करते हैं।
जी जी, इस तरह से हम कुछ फेसबुक से कुछ जो टिप्पणी आई है, हमारे जो पाठक हैं वो भी लिखते हैं, ऋषि कुमार सिंह श्रीनेत हैं, वो कहते हैं कि जो मुसलमान पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाएं, वंदे मातरम न गाएं, उन्हें बेशक पाकिस्तानी कहना लाजमी है। वहीं मुश्ताक अंजुम लिखते हैं कि मुसलमानों को पाकिस्तानी कहने का मतलब है कि उनके देश प्रेम पर शक किया जा रहा है और ये उनकी तौहीन है, और मुस्लिम भी अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। तो ये इस तरह से फेसबुक पे भी लगातार टिप्पणियां, लेकिन हमारे साथ दो श्रोताओं को हम इस वक्त शामिल करना चाहेंगे। जी अपना नाम बताएं, कहां से कॉल कर रहे हैं और अपनी राय रखें आप।
हेलो सर, नमस्कार।
जी नमस्कार।
सर मैं सगोरिया स्कूल घाटी जिला मंदसौर मध्य प्रदेश से बसंती लाल सूर्यवंशी बोल रहा हूँ। सर सर जी नमस्कार आपको भी।
जी जी जी
ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि जैसे ना तेरा ना मेरा, देश तो सभी विदेश भी है, देश जैसे भारत में ही से निकला हुआ सर है ना
जी।
जैसे ये लोग पाकिस्तान वाले बोलते हैं कि ये ऐसा भारत ऐसा करता है ऐसा करता है, पर इसमें एक सर से मेरी गुजारिश है कि कड़ा कानून क्यों नहीं बनाया जाता है। जैसे एकदम से अमेरिका में कानून पर उंगली सामने करने से उंगली काट दी जाती है, तो ऐसा तरह का कानून बनना चाहिए।
इस तरह का कानून तो कोई नहीं है। बहरहाल हमारे साथ एक और श्रोता है जी, अपना नाम बताएं और राज के विषय पे राय रखें अपनी।
जी नमस्कार राजेश जी, मैं कामरान बोल रहा हूँ यूपी जिला बहेली तहसील बहेली से।
जी कामरान जी,
हाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुसलमानों की सही बात है, आज के यानी कि उसमें जो है शक नहीं करना चाहिए। मुसलमान जो है देश का सच्चा नागरिक है, और ये है इस तरीके की जो लोग ये ऐसी बातें करते हैं ये एक आपस में दिलों में फर्क पैदा करने के लिए कहते हैं, और इसके लिए मतलब हमें सबसे पहले ये डिबेट जो होते हैं इस तरीके के जो नफरत पैदा करने वाले या कुछ नेताओं के भाषण होते हैं इस चीज से बहुत पता है, तो इन चीजों पर रोक लगना चाहिए, उन लोगों के खिलाफ कानून बनना चाहिए जो इस तरीके की भाषा इस्तेमाल करते हैं।
जी हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ एक और श्रोता जुड़े हुए हैं जी, अपनी अपनी बात रखें आप।
जी
अपना नाम बताएं और अपनी राय रखें।
मैं रामेश्वर आशियाकी से बोल रहा हूँ, रेवाड़ी जिले से।
जी जी
हरियाणा।
जी रामेश्वर जी,
मैं ये बोल रहा हूँ जी, देश सबका है और सबके कर्तव्य अधिकार बराबर है, तो जी भारत माता की जय बोल भी सबको बोलना चाहिए, वंदे मातरम सबको बोलना चाहिए।
जी
यही है
जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से जैसे इन्होंने बात कही है कि सबको वंदे मातरम बोलना चाहिए, इसी तरह से एक टिप्पणी इस पे आई है कि एजाज अहमद हैं, वो कहते हैं कि बहुत से देशों के पास भारत जैसे साधन भी नहीं है, फेसबुक पर ये कमेंट आया है, मगर वे तेज़ी से विकसित हो रहे हैं क्योंकि हम लोग नारे और झंडे जैसी बातों पर उलझे हुए हैं। क्या कहना है इस पर?
देखिए आपको पता होगा कि अमेरिका में आप अमेरिकी झंडे का जांघिया बना सकते हैं, आप अमेरिकी झंडे को कभी भी लहरा सकते हैं, यहाँ झंडे के साथ कुछ नियम जुड़े हुए हैं, तो उन नियम जब तक वो नियम जुड़े हुए हैं तो उन नियमों का सम्मान करना हर नागरिक का फर्ज है, ये तो मैं कहूँगा। लेकिन आप किसी के मुंह में चम्मच लगाकर उससे ये नहीं कह सकते मुंह खोल के उसका कि आप जो है कहो वंदे मातरम, आप नहीं कह सकते। आप ऐसा वातावरण तैयार करिए, आप ऐसा माहौल तैयार करिए कि कोई सोचे ही ना इस बारे में। और अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं था, अभी कुछ समय पहले तक 5-4 साल पहले तक ऐसा कहाँ था कि वंदे मातरम कोई भी कहने से मना करता था। अब जो पूरी पीढ़ी है, जो पिछले युवा पीढ़ी है, जो 20-25 साल के बीच के नवयुवक हैं, जो कोई एजुकेशन में पढ़े हैं, जो छोटे छोटे कस्बों से आकर इंजीनियर बने हैं, उनमें कतई ये बात नहीं है। ये जो है जो गरीब मुसलमान हैं एक तरफ वो, और एक तरफ ये धार्मिक जो लोग हैं दोनों संप्रदायों के, ये लोग जो हैं उनको भड़काते हैं धार्मिक संप्रदाय के लोग, और वो तब इस तरह की बात करते हैं। तो आप उनको प्रेम के साथ, गांधी जी ने क्या कहा था, गांधी जी ने कहा था कि अगर कोई मुसलमान जो है किसी गाय की हत्या कर देता है तो बजाय इसके कि मैं गाय को बचाऊं, मैं उस आदमी को बचाना ज़्यादा श्रेय समझूंगा। मानवीयता ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मतलब यहाँ तक इतनी एक्सट्रीम तक ले गए वो इस बात को। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि भाई ये देश सबका है, कोई पहले आया कोई बाद में आया, फिर जब मुग़ल आए तो वो तो यहीं के बन के रह गए ना, उन्होंने तो बाहर सामान चीज़ें नहीं भेजी। उनमें से कुछ ऐसे भी शासक हुए कि जिन्होंने अत्याचार भी किए, इसमें कोई शक नहीं, मंदिरों को उन्होंने तोड़कर उनकी मस्जिदें बनाई, इसमें भी कोई शक नहीं, लेकिन ओवरऑल उनका जो कंट्रीब्यूशन, क्या शेर शाह सूरी ने ऐसा काम किया क्या कोई?
जी,
आप ये बताइए, ऐसे ऐसे बहुत सारे मुसलमान
हैं। बिल्कुल, यानी कि सबको जो है वो एक विकसित सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। शुक्रिया मधुसूदन जी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और सभी श्रोताओं को भी धन्यवाद। उन श्रोताओं से हम क्षमा चाहेंगे जिन्हें समय कम होने के कारण इस कार्यक्रम में शामिल नहीं कर पाए। बीबीसी इंडिया बोल में इतना ही, अगले शनिवार को नए विषय के साथ फिर से हाजिर होंगे। आज स्टूडियो संभाला राजेश चौहान ने, और फेसबुक पर आप तक कार्यक्रम पहुंचाया अभिजीत ने। सुबह 6:30 बजे फिर से हाजिर होंगे नमस्कार भारत के साथ, दें इजाजत, नमस्कार।